पेज नंबर 115। दूसरी फसल रहबरे क़याम। इनकलाब और हज़रत मेहदी अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के क़याम से मुतालिक हम गुफ्तगू कर चुके हैं। अब इस फसल में आपके जिस्मी और इखलाकी खसूसियात व करामात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जिस्मी खसूसियात। नंबर एक, उम्र और चेहरा। हिस्सीन का बेटा इमरान कहता है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इस शख्स महदी का मुझे तारुफ़ कराइए और इनके कुछ हालात बयान कीजिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी औलाद में से है, इसका जिस्म इसराइल के मर्दों के मानिंद सख्त और सडूल है, मेरी उम्मत की मुसीबत के वक्त क़याम करेगा, इनके चेहरे का रंग अरबों से मुशाबा है, इनका कयाफा 40 मर्द के मानिंद होगा, सूरज चांद के टुकड़े की मानिंद चमकती होगी, ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जबकि जुल्म सितम से भरी होगी, 20 साल तक हकूमत की बागडोर अपने हाथ में लेगा और तमाम कुफार ममालिक मानिन कस्तनतुनिया और रोमों पर कब्ज़ा जमाएगा। इब्न ताउस मलाहिम सफ़ा नंबर 142। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदावंदे मताल हज़रत मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की उम्र गैबत के ज़माने में तुलानी कर देगा, इसके बाद अपनी कुदरत कामिला से इनके चेहरे को 40 साल से कम साला जवान की मानिंद बनाएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हज़रत कायम अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़हूर करेंगे तो लोग इनकार करेंगे और कोई इनका पासो लिहाज नहीं करेगा सिवाय उन लोगों के जिनसे खुदावंद आलम ने आलम अरवाह में सूरह एराफ़ आयत नंबर 172 एदो पैमा लिया हो, वो एक मुकम्मल और कामयाब और मुतदिल अंदाज में आएगा। एहकाकुल हक चिल नंबर 19 सफ़ा नंबर 654। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ क़याम करेंगे तो आपका 30 और 40 साल के दरमियान होगा। मरवी कहता है कि मैंने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ज़हूर व क़याम के वक्त आपके कायम अजलल्लाहु ताला फ़रजह की क्या अलामत है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलामत यह है कि उम्र तो ज़्यादा है लेकिन चेहरे से जवान होंगे और इतना जवान होंगे कि देखने वाला कहेंगे कि 30 या 40 साल के हैं। दूसरी अलामत यह है कि ज़माने की आमोदरफ्त इसे बूढ़ा नहीं बना सकेगी मगर यह कि उनको मौत आ जाएगी। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यकीनन वली खुदा 120 साल जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह उम्र करेंगे लेकिन चेहरा और रुखसार 30 या 40 साल जवान की तरह होगा। मरहूम मजलिसी फरमाते हैं, शायद इनसे मुराद हकूमत और सल्तनत की मुद्दत हो या ये कि हज़रत की उम्र इतनी ही थी और लेकिन इसे खुदावंद आलम ने तुलानी कर दिया है। लफ्ज़ मौफिक से मुराद आज़ा का मुतदिल और मुतनासिब होना है, इससे कनाया ये कि दरमियानी सिन के होंगे या आखिर उम्र में एक जवान की तरह हैं। बिहारुल अनवार जिल नंबर 52 सफ़ा नंबर 283। ज़हूर के वक्त आपके सिन के बारे में दीगर अकवाल भी पाए जाते हैं। अर्तात कहता है, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम 60 साल के हैं। बिहारुल अनवार जिल नंबर 52 सफ़ा नंबर 283। इब्ने हम्माद कहता है, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम 18 साल के हैं। मलाहिम इब्ने ताऊ सफ़ा नंबर 73 कंजुल माल जिल नंबर 14 सफ़ा नंबर 576। नंबर दो, जिस्मी खसूसियात अबू बसीर की ज़बानी। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मैंने आपके वालिद बुज़ुर्गवार से सुना है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सीना कुशादा और शाने चौड़े होंगी। हज़रत ने कहा, ए अबू मोहम्मद, मेरे वालिद ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह पहनी तो इन्हें बड़ी हो रही थी और इतनी बड़ी कि ज़मीन से ख़त खींच रही थी। मैंने भी इसे पहना तो मुझे भी बड़ी हुई लेकिन वही ज़िरा हज़रत कायम अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के जिस्म पर बिल्कुल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की तरह मुनासिब होगी और इस ज़रा का निचला हिस्सा कोता है। اس طرح سے کہ ہر دیکھنے والا گمان کرے گا کہ اسے موڑ دیا گیا ہے۔ ابن حماد فتن صفحہ نمبر 102۔ سلط کے بیٹے ریان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ صاحب امر ہیں؟ آپ نے کہا میں امام اور صاحب امر ہوں، لیکن نہ وہ صاحب امر جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، میں کس طرح وہ صاحب امر ہوں گا جبکہ میرے جسم کی ناتوانی دیکھ رہے ہو؟ حضرت قائم وہ ہیں، جب ظہور کریں گے تو بوڑھوں کی عمر ہوگی لیکن صورت جوانوں کی سی ہوگی، قوی اور تندرست جسم کے مالک ہوں گے، اگر کسی بڑے سے بڑے درخت پر ہاتھ مار دیں گے تو وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، اور اگر پہاڑوں کے درمیان آواز دیں گے تو چٹان چٹک جائیں گے اور پہاڑ نیز اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اخلاقی کمالات۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دیگر معصومین علیہ السلام کی مانند مخصوص اخلاقی کمالات کے مالک ہیں، یعنی حضرات معصومین علیہ السلام کامل انسان اور بشریت کے لیے نمونہ اور اعلیٰ حد تک نیک اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لوگوں میں سے سب سے زیادہ دانا، حلیم، پردبار اور پرہیزگار ہیں، وہ تمام انسانوں سے زیادہ بخشش کرنے والے عابد اور بہادر ہیں۔ خوف خدا۔ قاب کہتے ہیں حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا خدا کے سامنے خوف و ہراس عقاب کی طرح ہے، یعنی جس طرح اپنے پیروں کے سامنے جھکا سر جھکائے رہتا ہے۔ شاید قاب کی مراد یہ ہو کہ اگر عقاب طاقتور پرندہ ہے لیکن عقاب کی تمام قوت کا دار و مدار پروں پر ہے، اگر کسی وقت اس کے پر اس کی مدد نہ کریں تو آسمان سے زمین پر گر پڑے گا۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی الہی قدرت مند رہبر ہیں، لیکن اس قدرت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر خداوند عالم کسی وقت آپ کی مدد نہ کرے تو کارکردگی کی قوت باقی نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے حضرت خداوند عالم کے سامنے غازہ اور قاشا ہیں۔ ابن طاؤس کی نقل کے مطابق حضرت کا خشوع خداوند عالم کے سامنے نیزوں کے دو طرف سے تشبیہ دی گئی ہے، نیزے کی کارکردگی اور نشانے پر اس کا لگنا دو کنارے سے تعلق رکھنا ہے جو دو پروں کے مانند ہے، کہ اگر ایک سرا ٹیڑھا ہو تو نیزہ خطا کار جائے گا۔ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قدرت خداوند عالم سے ہے اور خداوند عالم کی مدد سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 2، زہد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ خدا جانتا ہے کہ آپ کا لباس معمولی اور کھردرا، غذا نانے جو حکومت تلوار کی حکومت سے اور موت تلوار کے سائے میں ہے۔ ابن طاؤس ملاحم صفحہ نمبر 73۔ عثمان بن حماد کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بزم میں تھے کہ ایک شخص نے حضرت سے عرض کی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسا معمولی لباس پہنتے تھے جس کی قیمت 4 درہم تھی، لیکن آپ قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا، حضرت امام علی علیہ السلام نے ایسا لباس اس زمانے میں زیب تن کیا کہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا۔ ہر زمانے کا عمدہ لباس اس زمانے کے لوگوں کا ہے۔ جب ہمارے قائم اجل اللہ تعالی فرجہ قیام کریں گے تو حضرت علی علیہ السلام کا لباس پہنیں گے اور انہی کی سیاست اور ڈگر پر چلیں گے۔ نمبر 3، لباس۔ روایات میں حضرت مہدی علیہ السلام کا مخصوص لباس مذکور ہے۔ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی بات آتی ہے تو کبھی جناب یوسف علیہ السلام کے لباس کی گفتگو ہوتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں وہ لباس دکھاؤں جو حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کے وقت زیب تن کریں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے صندوقچہ منگوایا اور اسے کھولا اور کرباسی روئی کے دھاگے سے بنا ہوا لباس نکالا और इसे खोला तो इसके बाएं तरफ एक खून का धब्बा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है। जिस दिन हज़रत के अगले चार दांत जंगे ओहद में शहीद हुए थे, हज़रत ने इसे पहना था और हज़रत कायम अजरल्लाहु फ़रजहु शरीफ यही लिबास पहने हुए क़याम करेंगे। मैंने इस खून को चूमा और आंखों से लगाया, फिर हज़रत ने लिबास तह करके उठा लिया। मुफस्सिल बिन उमर कहते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाब यूसुफ़ के लिबास के बारे में जानते हो? मैंने कहा, नहीं। हज़रत ने कहा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग रोशन की गई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक लिबास लाकर उन्हें पहनाया जो सर्दी और गर्मी से हिफाजत करता हो, और जब इनकी वफ़ात नज़दीक हुई तो उन्होंने दुआ की और जिल्द जिल्द में रखकर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाजू पर बांध दिया। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को दिया और जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाजू पर बांध दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी हादसात से गुजरने के बाद मिस्र के बादशाह हुए। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इसे खोला तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने इसकी खुशबू महसूस की। ये खुदावन की गुफ्तगु कुरान में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याकूब अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक हिकायत करता है कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, मेरी तरफ ख़ता की नस्बत ना दो। मैंने अर्ज़ किया, मैं कुर्बान जाऊँ, वो लिबास किसके ज़रिए आया है? कहा, इसके अहले हाथ लिबास हमारे कायम की हमराह है, जब वो ज़हूर करेंगे। फिर कहा, हर नबी जिसे इल्म दानिश या कोई और चीज़ बनवान उर्स मिली है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची है। सूरह यूसुफ 94। नंबर 4, असलहा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, जब हमारे कायम अजरल्लाहु ताला फरजह ज़हूर करेंगे और इनकी मामूरियत का वक्त आ जाएगा तो इनके साथ एक तलवार होगी जो इन्हें आवाज़ देगी, ए खुदा के वाली क़याम कीजिए और अपने दुश्मनों को कत्ल कीजिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत महदी अजरल्लाहु फरजा सहूर के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही लिबास ज़ेबतन करेंगे जो उन्होंने जंगे ओहद में ज़ेबतन किया था, और वही ज़िरा व अमामा भी होगा जो हज़रत ने पहना था, और ज़ुल्फ़िकार जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है हाथ में लेंगे। 8 माह तक बेदीनों के कश्तों के पुश्ते लगाएंगे। जाबिर जाफई कहते हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम महदी अजरल्लाहु ताला फरजा मक्के से रुकन मकाम के दरमियान अपने वजीर और 313 सहाबा के साथ ज़हूर करेंगे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूरुल अमल परचम और असलहे के साथ हाथ में होगा। इस वक्त मनादी आसमान मक्के से हज़रत के नाम और आपकी विलायत के साथ आवाज़ देगा, इस तरह से कि तमाम अहले ज़मीन इस नाम को सुनेंगे। आपका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। नंबर 5, इमाम और सूरत की शनाख्त। हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फरज की एक खसूसियत ये होगी कि इंसान की अंदरूनी हालत चेहरों से पहचान लेंगे और नेक अफराद को बर्त किरदार से जुदा कर देंगे और फसाद करने वालों को इसी शनाख्त के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हज़रत कायम अजलल्लाहु फरजह शहूर करेंगे तो कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसे हज़रत पहचानते ना हों कि वो नेक इंसान है या फासिदो बद किरदार। नेस फरमाते हैं, जब कायम अजलल्लाहु ताला फरजह क़याम करेंगे तो हमारे दुश्मनों को इनके चेहरों से पहचान लेंगे और इस वक्त इनके सरों पैर को पकड़ेंगे और अपने साथियों के साथ इन्हें कत्ल कर देंगे। इसी तरह फरमाते हैं, जब क़याम करेंगे तो दोस्त दुश्मन को अपनी क़ुव्वत शनाख्त से अलग कर देंगे। मुआविया धनी कहते हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने आए मुजरमीन में जिसमें से है अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे तो फिर इनके सर और पैर पकड़े जाएंगे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुआविया, इस सिलसिले में दूसरे लोग क्या कहते हैं? मैंने कहा, इनका ख्याल है कि खुदावंदे आलम कयामत के दिन गुनाहगारों को इनके कयाफे से पहचान लेगा और सर के बालों पांव पकड़कर जहन्नुम में डाल देगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदावंदे आलम को क्या ज़रूरत है कि इन्हें इनके चेहरों से पहचाने जबकि इसी ने इन्हें पैदा किया है। मैंने कहा, फिर आयत के क्या मायने हैं? आपने कहा, जब कायम अजरल्लाह ताला फराजा ज़हूर करेंगे तो खुदावंदे आलम इन्हें चेहरे शनासी का इल्म अता करेगा और हज़रत हुक्म देंगे कि काफिरों को सर और पैर पकड़कर उन पर सख्त ज़र्ब लगाई जाए। नंबर 6, करामात। अगरचे आखिर ज़माने में लोग कवि हकूमत के बरूएकार आने से जबकि वो मजलूमों के हामी के इंतज़ार में वक्त शुमारी करेंगे, लेकिन बहुत सारी हकूमतों से खुशहाली नहीं होंगे और हर ग्रोह और पार्टी की बात नहीं मानेंगे। सच्ची बात यह है कि वो किसी को कादिर नहीं समझते जो दुनिया के निज़ाम को दुरुस्त कर सके और पुरआशोब दुनिया को ठिकाने लगा सके। इस लिहाज से जो समाज के नज़्म बरकरार रखने हों और दुनिया में अमनियत की वसत के दावेदार हैं, उन्हीं माफूक कुव्वत का मालिक बन होना चाहिए। इस बात का इस्बात करामतों के जाहिर करने और खारिकुल आदा का कामों के अंजाम देने पर है। शायद इसीलिए कि हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इब्तदाए ज़हूर में मौजज़ात और करामात से काम लेंगे। अगर उड़ते परिंदों को आवाज़ देंगे तो वो फौरन नीचे आकर हज़रत के इख्तियार में आ जाएंगे। खुश लकड़ी को अगर बंजर और सख्त ज़मीन में गाड़ेंगे तो बिला फासला वो हरी भरी हो जाएगी और इसमें शाखों पत्ते निकल आएंगे। इन कामों से लोगों पर साबित हो जाएगा कि मेरा ऐसी शख्सियत से सामना है जिसके इख्तियार में ज़मीन व आसमान है। ये करामतें दर हकीकत इन लोगों के लिए एक नवेद और मजदा होंगी जो साल साल और सदियों से आसमान व ज़मीन के नीचे मजलूम व मकलूब और दबे होंगे और लाखों कुर्बानी देने के बावजूद कादिर ना हो सके होंगे, जो ऐसे हमलों के लिए रुकावट बन सके, लेकिन इस वक्त खुद को एक ऐसी शख्सियत के सामने पाएंगे जिसके इख्तियार में ज़मीनों आसमानों माफिया होंगे। जो लोग कल तक कहत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हद तो ये थी कि इब्तदाई ज़रूरतों को भी पूरा ना कर सकते होंगे और खुश साली और ज़रात ना होने की वजह से इक्तिसादी बहरान का शिकार होंगे। आज वो लोग ऐसी शख्सियत के सामने होंगे जिसके अदना इशारे से ज़मीन सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी और पानी और बारिश का ज़खीरा हो जाएगा। जो लोग लाइलाज बीमारियों से दो चार होंगे, आज इस शख्सियत का सामना करेंगे जो लाइलाज बीमारियों का इलाज करेगी और मुर्दों को हयात देगा। ये सारे मौजज़ात और करामात हैं जो इस ज़ात की क़ुव्वत और सदाक़त और गुफ्तार को साबित करेंगी। खुलासा ये कि दुनिया वाले यकीन करेंगे कि ये नवेद देने वाला गुज़िश्ता दावेदारों से किसी तरह मुशाबा नहीं है, बल्कि ये वही निजात देने वाला अल्लाह का वाकई ज़खीरा महदी अलैहिस्सलाम मौऊद है। कभी हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फरजा की करामतें सिपाहियों के लिए ज़ाहिर होंगी जो इनके ईमान को मोहक्कम और एतकाद को रासिक करेंगे, और कभी दुश्मनों और शक करने वालों के लिए होंगी जो आ हज़रत पर इनके ईमान और एतकाद का सबब होगा। यहाँ पर बाज़ मौजज़ात और करामात को बयान कर रहा हूँ। नंबर 1, परिंदों का बात करना। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अपनी राह में एक सादात हुस्नी से मुलाकात करेंगे जिसके पास 12,000 सिपाही होंगे। हुस्ना एहतजाज करेगा और ख़ुद को रहबरी का ज़्यादा हकदार समझेगा। हज़रत इसके जवाब में कहेंगे, मैं महदी अलैहिस्सलाम हूँ। हुस्ना इससे कहेगा, क्या तुम्हारे पास कोई अलामत और निशानी है कि मैं भी बयत करूं? हज़रत आसमान पर उड़ते परिंदों की तरफ इशारा करेंगे तो परिंदा नीचे आ जाएगा और हज़रत के हाथों पर बैठेगा। फिर इस वक्त कुदरत खुदा से गोया होगा और हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फरज की इमामत की गवाही देगा। सैयद हुस्ना के मज़ीद इत्मीनान के लिए हज़रत सूखी लकड़ी ज़मीन में गाड़ेंगे तो वो सरसब्ज हो जाएगी और शाखों पत्ते निकल आएंगे। दोबारा पत्थर के टुकड़े को जमीन से उठाएंगे और हल्के से दबाव से इसे रेजा रेजा करके खमीर की तरह नरम कर देंगे। सैयद ये सारी करामतें देखने के बाद हजरत पर ईमान लाएगा और खुद अपनी तमाम फौज के साथ हजरत के सामने सर तस्लीम खम कर देगा। हजरत इसे फौज के पहले दस्ते का कमांडर बना देंगे। नंबर 2, पानी का उबलना और ज़मीन से ग़िज़ा का हासिल करना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत इमाम अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ शहर मक्का में ज़हूर करेंगे और वहाँ से कूफे का कस्त करेंगे तो अपनी फ़ौज में ऐलान करेंगे कि कोई अपने हमराह खाना पानी नहीं लेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर जो अपने हमराह साफ शफाफ पानी का 12 चश्मे रखता है लिए होंगे, रास्ते में जहाँ भी रखेंगे इसको नस्ब कर देंगे। ज़मीन से पानी के चश्मे उबल पड़ेंगे और सारे भूखे और प्यासे अफराद इससे शिकमसेर हो जाएंगे। रास्ते में सिपाहियों को खुराक का बंदोबस्त इसी तरह से है। फिर जब नजफ पहुँच जाएंगे वहाँ इस पत्थर के नस्ब करने से हमेशा के लिए पानी और दूध उबलता रहेगा जो भूखे प्यासों को सैराब करेगा। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हज़रत कायम अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ज़हूर करेंगे तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, असा और संगे मूसा अलैहिस्सलाम इनके हमराह होगा। फिर हज़रत के हुक्म से सिपाहियों के दरमियान ऐलान होगा कि कोई अपने खाने पीने नेज जानवरों के चारे का इंतज़ाम ना करे। बाज़ लोग अपने साथियों से कहेंगे, क्या वो हमें हलाक करना और हमारी सवारियों को भूखा प्यासा मारना चाहते हैं? पहली जगह पहुंचते ही हज़रत पत्थर ज़मीन में नस्ब करेंगे और फ़ौज के खाने पीने नेज चौपाइयों के चारे का इंतज़ाम हो जाएगा। शहर नजफ पहुंचने तक इससे इस्तफादा करते रहेंगे। नंबर 3, तयुल अर्ज और साये का फ़ुकदान। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हज़रत महदी अलैहिस्सलाम अजलल्लाहु ताला फरजा ज़हूर करेंगे तो ज़मीन नूर इलाही से रोशन हो जाएगी और हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आप तेज़ी से रास्ता तय करेंगे और आप वो हैं कि जिसका साया ना होगा। नंबर 4, इंतकाल का ज़रिया। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने सूरा नामी शख्स से कहा, ज़ुल्क़रनैन को इख्तियार दिया गया है कि नरम और सख्त दो बादलों में किसी एक का इंतखाब कर लें। उन्होंने नरम बादल का इंतखाब किया। सख्त हज़रत साहिबुल अमर के लिए ज़खीरा रह गया। सूरा ने पूछा, सख्त बादल किस के लिए है? हज़रत ने कहा, जिन बादलों में चमक गरज कड़क और बिजली होगी, जब ऐसा अब्र होगा तो तुम्हारे साहिबुल अम्र इस पर सवार हैं। बेशक आप बादल पर सवार होंगे और इसके ज़रिए आसमान की बुलंदी की तरफ जाएंगे और सात आसमानों ज़मीन की मुसाफत तय करेंगे। वही पांच ज़मीनें जो काबिल सकूनत हैं और दो वीरान हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब खुदावंद आलम ने ज़ुल्क़रनैन को सख्त नरम व बादल के दरमियान एक का इख्तियार दिया तो उन्होंने नरम को इख्तियार किया। ये वही अब्र है जिसमें बिजली और कड़क नहीं पाई जाती है, और अगर सख्त बादल का इंतखाब करते तो इन्हें इससे इस्तेफादे की इजाज़त नहीं मिलती। इसलिए कि खुदावंद आलम ने सख्त बादल को हज़रत कायम अजलल्लाहु ताला फरजा के लिए ज़खीरा किया है। नंबर 5, ज़माने की चाल में सुस्ती। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हज़रत इमाम अजलल्लाहु ताला फरजा शरीफ ज़हूर करेंगे तो कूफे के सिमत हरकत करेंगे, फिर वहाँ 7 साल हकूमत करेंगे जिसका हर साल 10 साल के बराबर होगा। फिर इसके बाद जो अल्लाह का इरादा होगा अंजाम देंगे। कहा गया, साल किस तरह तुलानी होगा? इमाम ने फरमाया, खुदावंद आलम शमसी और इसके फरिश्तों को हुक्म देगा कि अपनी रफ्तार कम करो, इस तरह से अय्याम व साल की तुलानी हो जाएंगी। कहते हैं कि अगर इनकी रफ्तार में मामूली से भी तब्दीली हुई तो आपस में टकराकर तबाह हो जाएंगे। इमाम ने जवाब दिया, ये कौल मादा परस्तों और मुनकरीन खुदा का है, लेकिन मुसलमान जो खुदावंद आलम को इसका गर्दिश देने वाला जानते हैं, ایسی بات نہیں کہتے۔ نمبر 6، قدرت تکبیر۔ کعب حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے شہر قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں کہتا ہے، حضرت اپنا پرچم زمین میں رکھ کر پانی کی طرف وضو کرنے نماز صبح کے لیے جائیں گے، پانی حضرت سے دور ہو جائے گا، امام پرچم اٹھا کر پانی کی طرف دوڑیں گے تاکہ حضرت کا اس گوشے سے گزر ہو جائے، پھر اس وقت پرچم زمین میں رکھ دیں گے اور سپاہیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے، اے لوگوں، خداوند عالم نے دریا تمہارے لیے بنائے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کے لیے شگاف کیا تھا، پھر فوجی دریا سے مار کر شہر قسطنطنیہ کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے، سپاہی تکبیر آواز بلند کریں گے اور شہر کی دیواریں ہلنے لگیں گی، دوبارہ تکبیر کہیں گے، پھر دیوار ہلنے لگے گی، جب تیسری بار تکبیر کی آواز بلند ہوگی تو 12 برجی محفوظ دیواریں زمین بوس ہو جائیں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ قسطنطنیہ کے سامنے اتریں گے، اس وقت اس قلعے میں 7 دیواریں ہوں گی، حضرت 7 تکبیر کہیں گے تو دیواریں زمین بوس ہو جائیں گی، اور بہت ساری رومی سپاہی کے قتل کے بعد وہ جگہ حضرت کے تصرف میں آ جائے گی اور کچھ گروہ اسلام لے آئیں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ اور ان کے اصحاب تحریک جاری رکھیں گے، رومی کسی قلعے سے نہیں گزریں گے مگر وہ ایک لا الہ الا سے ڈہ مسمار ہو جائیں گے، اس کے بعد شہر قسطنطنیہ سے قریب ہو جائیں گے، وہاں پر چند تکبیریں کہیں گے، پھر اس کے پڑوس میں واقع دریا خشک ہو جائے گا اور پانی زمین کی تہ میں چلا جائے گا اور شہر کی دیواریں بھی گر جائیں گی، وہاں سے رومیوں کے شہر کی جانب چل پڑیں گے اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو مسلمان 3 تکبیر کہیں گے تو شہر دھول اور ریت کی طرح نرم ہو کر اڑنے لگے گا۔ نیز آ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنی تحریک جاری رکھیں گے یہاں تک کہ شہروں کو عبور کرتے ہوئے دریا تک پہنچ جائیں گے، حضرت کا لشکر تکبیر کہے گا، اس کے کہتے ہی دیواریں آپس میں ٹکرا کر گر جائیں گی۔ نمبر 7، پانی سے گزر۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام کریں گے تو افواج کو شہر قسطنطنیہ تک روانہ کریں گے، اس وقت وہ خلیج تک پہنچ جائیں گے، اپنے قدموں پر ایک جملہ لکھیں گے اور پانی سے گزر جائیں گے، اور جب رومی اس عظمت اور معجزے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہی ایسے ہیں تو خود حضرت کیسے ہوں گے، اس طرح وہ دروازے کھول دیں گے اور لشکر شہر میں داخل ہو جائے گا اور وہاں حکومت کرے گا۔ نمبر 8، بیماروں کو شفا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف پرچموں کو ہلا کر معجزات ظاہر کریں گے اور خداوند عالم کے اذن سے ناپید اشیاء کو وجود میں لائیں گے، سفید داغ اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیں گے، مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کریں گے۔ نمبر 9، ہاتھ میں موسیٰ کا عصا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جناب آدم علیہ السلام سے متعلق تھا جو شعیب علیہ السلام پیغمبر تک پہنچا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ابن عمر ان کو دیا گیا، وہی عصا اب میرے پاس ہے، ابھی جلدی ہی اسے دیکھا ہے تو وہ سبز تھا، ویسے ہی جیسے ابھی درخت سے الگ کیا گیا ہو، اب اس عصا سے سوال کیا جائے گا تو جواب دے گا اور وہ ہمارے قائم کے لیے آمادہ ہے، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے انجام دیا ہے وہی حضرت قائم انجام دیں گے، اور اس عصا کو جو بھی حکم ہوگا انجام دے گا، اور جہاں ڈال دیا جائے گا جادو کو نگل جائے گا۔ نمبر 10، بادل کی آواز۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آخر زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو بادل آپ کے سر پہ سایہ فگن ہو کر جہاں آپ جائیں گے آپ کے سر پر ہو جائے گا، تاکہ حضرت کی سورج کی تمازیہ سے حفاظت کر سکے، اور ببانگ دھل آواز دے گا کہ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی نبی اور وصی کا معجزہ باقی نہیں بچے گا، مگر یہ کہ خداوند عالم اسے حضرت قائم اجر اللہ تعالی فرجہ کے ہاتھوں ظاہر کر دے گا، تاکہ دشمنوں پر حجت تمام ہو جائے۔